समंदर पार से बहुत ही प्यारे बहुत ही शफीक और मेहरबान आलिम हसन अलियास साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनको खुश आमदेद कहना चाहता हूँ। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हसन अलियास साहब, रिवायत पसंदी के इस जुनून ने तहकीक का जौक और शौक छीन लिया है हमसे। हम एक दूसरे के खिलाफ बात करने आ तो कुजा, अब तो यह कि इल्मी तहकीक भी नहीं कर पाते, टेबल टॉक तो कुजा, अब तो एक दूसरे की किताबें भी नहीं पढ़ते। क्या यही अहसन तरीका है कि अगर आप मेरी मजहबी फिक्र से इख्तलाफ करते हैं तो मुझे इंतहाई गुमराह तसव्वुर करके बायकॉट करते हैं और फिर इससे ज्यादा बढ़ के कुछ करें, या कोई और तरीका भी है?
यकीनी तौर पे हम सब का मसला है और हम मुसलमानों की हैसियत से अपनी तहजीबी रिवायत का इस वक्त दुनिया में दिफा नहीं कर सकते। उसकी एक बड़ी वजह हमारा यही भयानक चेहरा है जिसको पेश करते हुए हम शर्मसार होते हैं कि हमारे यहाँ इख्तलाफ में जीने का करीना, इख्तलाफ को बर्दाश्त करने का रवैया, इसका बहुत फुकदान है। मेरे नज़दीक अगर आप किसी रवैये या किसी मनफी पहलू को दुरुस्त करना चाहते हैं, उसकी तहलील करना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला काम है करने का वो ये है कि मुस्बत जाविया नज़र के साथ उस मसले का जायजा लें। हमारे बिलमूम ये होता है किसी का कोई शेर सुना दिया, अहले रिवायत के ऊपर कोई तनकीद कर दी, मदारिस को कहीं कटहरे में खड़ा कर दिया और एक पूरा मुकदमा कायम करके कि हमारे यहाँ बर्दाश्त का कल्चर नहीं है, उलमा को ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इस तरीके से इस्लाह की इब्तदा की जाती है। दुनिया में कोई भी इस्लाह उस वक्त तक फायदेमंद या सूदमंद साबित नहीं हो सकती जिस वक्त तक उसका जाविया नजर मुस्बत ना हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिन लोगों की इस्लाह करना पेशे नजर है, अगर हम उनको इब्तदा ही में हदफ तानो तशनी बना दें, हम उनको इब्तदा ही में तनकीद का महवर बना दें, तो जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं वो भी हासिल नहीं होगा।
सही।
हमारा मसला है, ये मसला अहले इल्म उलमा भी जानते हैं, हमारे सियासी ज़ोमा भी जानते हैं, हमारे मुफक्किरीन भी जानते हैं। इस मसले की तहलील के बहुत सारे अनासर हैं, कुछ हमारी खित्ते की सूरत हाल का दखल है, कुछ आलमी सतह पे मुसलमानों को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसका एक रद्द अमल है, कुछ खुद हमारी मजहबी फिक्र को इस जदीद अहद ने जिन सवालात से दो चार कर दिया है उसके सामने उलमा की बेबसी की गम्माजी करता है ये सख्त रवैया। आप ये देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि उलमा से सवाल नहीं हो सकता या उलमा से गुफ्तगू नहीं हो सकती तो उसके पीछे एक साइंस है जो कारफरमा है
जी।
ये ऐसा नहीं होता कि बर्दाश्त यादव में बर्दाश्त का कल्चर एक दिन में रूबा अमल हो जाए, इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम सोसाइटी के सेगमेंट का हिस्सा हैं।
ठीक ठीक।
अगर हम सोसाइटी में एज अ मुस्लिम के खड़े हैं तो हमारा काम उन मुहर्रिकात का क्रिटिकल एनालिसिस करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना कि आगे बढ़ के हम इसमें क्या बेहतरी का अवसर पैदा कर सकते हैं। ये पहलू है जिसकी तरफ मैं इब्तदा में तवज्जो।
बहुत अच्छा पहलू है, बहुत ही क्लियर पहलू है।
उमूम जो है
जी,
हम लोगों को हदफ तनकीद बना के मनफी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं,
मनफी गुफ्तगू से आगाज नहीं होता
दाखिल हों और हम कोई बेहतर काम करना चाहते हैं। अगर आप याद दें तो मैं तीन बातें अर्ज करता हूँ। हमारे यहाँ बर्दाश्त के कल्चर का फरोग उस वक्त तक नहीं हो सकता जिस वक्त तक हम रूह असर को ना पहचाने। ये दौर असर हुर्रियत है, असर इस्तदलाल है। उलमा का जो भी जाविया नजर हो, मैं ये कहता हूं कि अगर वो दीनी लिहाज से समझते हैं कि कोई उनके नुक्ता नजर को अगर दुरुस्त नहीं समझता तो हम उसकी तजलील करेंगे, तफसीक करेंगे, तनकीद करेंगे, उसको फासिक कहेंगे, यहां तक कि मैं कहता हूँ काफिर भी कहेंगे। ये हक भी हम मान लें उनका।
अच्छा।
तब भी उनको ये मानना पड़ेगा कि ये असर हुर्रियत है, असर इस्तदलाल है। अगर आपको ये हक है कुछ कहने का तो दूसरे को हक है कि वो आपकी बात से इख्तलाफ करे, और आपको अगर कोई बात कहने का ये हक है कि आप फतवा दें तो इस्तदलाल से दें, दलील से दें, आर्गुमेंट से दें। उसके बगैर इस जमाने में कोई काम नहीं चल सकेगा। ये जमाने के खिलाफ, रूह असर के खिलाफ है। अगर हम इस चीज को नहीं पहचानेंगे, जमीन की पेट से हमारा खात्मा हो जाएगा। अहले मजहब, अहले कलीसा की रिवायत हमें यही सबक देती है।
जी मोहम्मद हसन साहब फरमा रहे हैं कि रूह असर को समझने की ज़रूरत है और ये तो आसरी तकाजे हैं, ये तो हुर्रियत का मामला है। आपको आज़ादी, आज़ादी राय, आज़ादी फिक्र हासिल है, ज़माने का तकाजा यही है, इसको समझें, इस मिजाज से आशना रहें। डॉक्टर उमर महमूद सिद्दीकी साहब तशरीफ़
जी
फरमाएं, मैं आपसे फैज़ तलब करना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, क्या वजह है आज भी मसले की इख्तलाफ की बिना के ऊपर हम मकालात नहीं नशर कर सकते, उसकी अशात नहीं हो सकती, लिख नहीं सकते, बहस नहीं कर सकते? क्या ये तय हो गया कि अब जो कोई भी रिवायत के खिलाफ बात करेगा वो गुमराह है और उसको सजा मिलनी चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम उनवान पर बात हो रही है और इससे कबल अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब और अल्लामा हसन इलियास ने इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ बुनियादी उसूली बातें वाज़े करते हुए बिलखसूस उन निकात पर बात करूँ जो गामदी साहब ने और हसन इलियास साहब ने उठाया है।
फरमाए।
देखिए, एक बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि इख्तलाफ़ राय और हक से इन्हिराफ में फ़र्क होता है।
अच्छा,
जिस तरह गांधी साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को इख्तलाफ के उसूल पर बनाया है लेकिन इन्हिराफ के उसूल पर नहीं बनाया, तो याद रख लीजिए कि डिविएशन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दो और दो चार होते हैं। अगर कोई कहेगा मैं इन्हिराफ करता हूँ और पाँच कहता हूँ, या आग जलाती है कोई कहता है कि नहीं जलाती, तो यकीनन इससे जान का मसला भी पैदा हो सकता है। तो डिविएशन, इन्हिराफ और इख्तलाफ राय में हमेशा फ़र्क मलहूज रखें। नंबर टू, आप इख्तलाफ राय और ब्लास्फेमी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिनाइल एंड ब्लास्फेमी, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ज़रूर मलहूज रखें।
अच्छा,
हमारे यहाँ अमूमी तौर पर तौहीन और ब्लास्फेमी और डेफेमेशन को या हेट स्पीच को मिक्सअप कर दिया जाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ, और मैं समझता हूं कि यह बात दुरुस्त नहीं। हमारे यहाँ उम्मत मुस्लिमा की 1400 साल तारीख मौजूद है। हुजूर अलैहि सलाम के अहद मुबारक में आप देखें कि किस तरह से पूरा कुरान मजीद का एक इल्म है जिसे इल्मुल मुखासमा कहा गया है, और एक डायलॉग है जो वक्तन फवक्तन दुनिया के मुख्तलिफ मजाहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ होता रहा है।
सही है।
अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत में वो पोर्शन बहुत अहमियत का हामिल है जिसमें वो कभी किसी खुदा होने के दावेदार से बात करते हैं, कभी मुनकर नबूवत से बात करते हैं, यहाँ तक कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ज़रा नरम लहजे में बात कीजिएगा।
जी,
तो इसका मतलब है कि गुफ्तगू के आदाब बताए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो काबिल तवज्जो बात यह है कि मोतज़िला हों या खवारिज हों, 1400 साल से आप देखिए कि उम्मत मुस्लिमा में हमेशा कलामी मबाहिस जेरे बहस रहे हैं, और ऐसा हरगिज नहीं है कि किसी ने इख्तलाफ राय किया हो तो उसको कत्ल कर दिया गया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है और रियासती सतह पर अदालत का निज़ाम कमज़ोर है तो इस तरह के मसाइल सामने आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सज़ा देकर इबरत का निशान नहीं बनाया जाता। लेकिन अभी क्योंकि हम अहले इल्म की बात कर रहे हैं तो अहले इल्म के माबैन इख्तलाफ राय को एहतराम से देखा जाता है। हमारे यहाँ फुकहाए अरबा हों या इल्मुल कलाम के मबाइस हों, हमारे यहाँ हमेशा इल्मुल कलाम में और दीगर फिकी मबाइस में इख्तलाफात को अच्छी निगाह से देखा गया। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह कहा गया कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता तो तब भी हमारा रब उनको गवारा कर रहा है, लेकिन यह वजाहत जरूरी है कि उनकी उखरवी निजात नहीं है।
ठीक है,
वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इनकार कर दिया गया। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बर्दाश्त और बेइज्जती में थोड़ा सा फर्क होता है।
अच्छा,
आज पूरी दुनिया में 9/11 के बाद 70 लाख से ज्यादा मुसलमान मार दिए गए, यमन से लेकर फिलिस्तीन, कश्मीर, सीरिया, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल हमारे सामने, कुरान जलाया जा रहा है, हमारे नबी की शान में तौहीन हो रही है, और दुनिया आज भी हमें बर्दाश्त का और अदम बर्दाश्त का हमें ताना देती है। मैं ये समझता हूं कि चीजों को एक दूसरे अंदाज से देखने की जरूरत है।
अच्छा,
आप देखिए कि मजहब की राय रखने और मजहब पर अमल करने में और आजादी या उसकी तबलीग करने में फर्क होता है। अगर तौहीन मजहब किसी की राय बन जाए या कोई ऐसा शख्स ऐसी राय रखने लगे कि जो मजहबी तौर पर तो हो सकता है कि उसके मजहब में दुरुस्त हो लेकिन रियासती सतह पर वो ठीक नहीं हो सकता, जैसे सती की रस्म है
जी,
जैसे मॉर्मन्स के अंदर दूसरी शादी को बतौर फर्ज करने का हुक्म है, तो जाहिर है कि रियासत उमूमी तौर पर ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देती। फिर आप देखिए कि मजहबी और मसलकी इख्तलाफात के भी कुछ आदाब होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस वक्त पूरी दुनिया फ्रीडम के तनाजुर में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के एक आर्टिकल का बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है, उसमें इर्तदाद की बात की गई है, उसमें रिलीजियस थॉट में ब्लास्फेमी को जवाब फराहम किया जा रहा है। अब आप देखिए कि रिलीजियस प्लूरलिज्म या सेक्टेरियन प्लूरलिज्म की बुनियाद पर जो आज इख्तलाफ राय के एहतराम की बात की जा रही है, उसमें बहुत वाजे तौर पर यह बात मौजूद होती है कि यह बताया जाता है कि हर राय को हक और बातिल में तमीज को खत्म करते हुए उसको एक राय के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। तो याद रख लें कि हम कभी भी हक और बातिल की तमीज को खत्म नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाता है मा यस्तविल आमा वल बसीर, वलज जुलुमात वल नूर, वलज जिल्लु वल हरूर, वमा यस्तविल अहया वलल अमवात। तो ये हो ही नहीं सकता कि कुफर और इस्लाम, गुमराहियत और बेहतरी एक हो जाए। मैं एक आखिर में बस एक गुजारिश करूंगा और मैं दसबस्ता गुजारिश करूंगा तमाम सामीन से भी और खास तौर पर जावेद अहमद गांधी साहब से और हसन इलियास साहब से कि बहुत अच्छी बात की गई कि हमें आरा का इख्तलाफ जो है उसका एहतराम करना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि ये बुरहान जावेद अहमद गांधी साहब की किताब है, इसमें लिखा हुआ है कि इस्लाम के मुकाबले में तसव्वुफ वो आलमगीर जलालत है जिसने दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों को मुतासिर किया। और मीज़ान में सफ़ा नंबर 36 पे आप इब्तिदा में देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि ये जो कुरान की तहदीद और तख़सीस कुरान से हदीस से की जाती है, ये किल्लत तदब्बुर और सूए फ़हम का नतीजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम दुनिया में हर मकाम पर इख्तलाफ राय के एहतराम की बात करते हैं।
जी बिल्कुल,
तो मैं ये गुजारिश तो करूंगा कि अगर ये हो सके कि इतने अकाबर सूफिया जिसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इब्न अरबी, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल्फिसानी, शाह वलीउल्लाह के नाम लिखने के साथ फिर ये कहा जाए कि तसव्वुफ एक आलमगीर जलालत है, उसने इन ज़हीन लोगों को खराब कर दिया है, तो मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा कि एटलीस्ट इस बात से रुजू किया जाए और अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया जाए।
आम फहम का ये सवाल बनेगा,
यानी अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत को, इकबाल जैसी शख्सियत को गुमराह कह दिया गया। और मैं ये बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि कम से कम नेक्स्ट एडिशंस में इन जुमलों को निकालने का
बुनियादी सवाल मेरा ये होगा कि चले मैंने कहा ना कि चूंकि प्रोग्राम ही आज इस बुनियाद के ऊपर हो रहा है, इस सीमा के ऊपर हो रहा है कि आप इख्तलाफ करें और गैर रवायती इख्तलाफ करें, वो जो मजहबी सोच आपकी है वो मेरी नहीं है, मगर अंदाज इख्तलाफ क्या होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है, ये जलालत का वर्ड इंतहाई गहरा वर्ड है जो हमारे दिलों को नुकसान यानी तकलीफ होती है सुन के, सोच के, समझ के, तो क्या इसमें वोकैबुलरी का इस्तेमाल दूसरा होना चाहिए, तराजिम हमारे पास जो आए हैं वो दूसरे हैं, क्या मामला है, इसको समझने की कोशिश करूंगा। सवाल सीधा सीधा हज़रत इलियास साहब से है मगर एक मुख्तसर सा वफ़ा है, घूम कर आएंगे, लौट कर आएंगे, वापस यहीं आएंगे, अल इस्लामी में आपका इंतजार रहेगा। खुश आमदेद डॉक्टर उमर सिद्दीकी साहब, ने मेरे सामने बुरहान ये किताब रखी है और इसमें मौजूद ये जुमले, ये कलमात। मैं हसन अलियास साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे, मैं तालिबे इल्म हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक रवादारी रहे, एक एहसास रहे, दूसरे को सुना जाए, समझा जाए। अब तसव्वुफ वो आलमगीर जलालत है कि जिसने दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों को मुतासर किया है। मुझे नहीं मालूम इसमें ज़ाहिर आप बयान फरमाएंगे क्या कहा जा रहा है, मगर मैं इतना ज़रूर समझ रहा हूँ कि बड़े सूफिया औलिया जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, हम उनके लिए सही जुमले इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या कहेंगे?
देखिए, आपके इस सवाल के जवाब में मैं ये अर्ज करूँगा कि शायद लोगों को ये गुमान हो, ये ज़ाहरी बात है, गामदी साहब हों या और कोई दूसरा बुजुर्ग हो जिससे हमें अकीदत है या जिससे हमें मोहब्बत है, जिसका हम एहतराम करते हैं या जिसके नुक्ता नज़र से हमें इत्तफाक है, तो हम दुनिया में हर जगह जहाँ पर किसी दूसरे शख्सियत के जहन में उनके अफकार पर सवाल उठेगा तो उसके दिफा के लिए कमर बस्ता हो जाएंगे, उसकी हर बात को दुरुस्त साबित करने के लिए जोर लगाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। गामदी साहब हो या उम्मत के कोई दूसरा आलिम हो, अगर उसकी किसी बात से कोई दूसरा शख्स इख्तलाफ करता है और वो इख्तलाफ दलील और इस्तदलाल की बुनियाद पे करता है, तो हम सबको उस इख्तलाफ के अंदर जो इस्तदलाल है उसको कबूल करना चाहिए।
यानी आप कंडेम कर रहे हैं, इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, इसकी तायिद नहीं कर रहे?
कोई लगी लिपटी बात नहीं है, कोई शुगर कोटेड बात नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि उलमा को आपस में गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे के एहसास का, एक दूसरे के जज्बात का, एक दूसरे की शख्सियात का एहतराम मलहूज रखना चाहिए है, तो इसमें गामदी साहब का इस्तेसना या किसी दूसरे बुजुर्ग का कोई इस्तेसना कोई पैदा नहीं कर सकता। मैं बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी लगी लिपटी के यह करूंगा, کہ اگر غامدی صاحب کی کسی عبارت میں، کسی گفتگو میں، کسی کتاب میں، وہ ماضی کی ہو، وہ حال کی ہو، وہ مستقبل کی ہو، کبھی کوئی ایسا کلمہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، یا اس کے اندر جو پہلو چھپا ہوا ہے اس سے ہماری بڑی شخصیات کی تخفیف ہوتی ہے، تو اس پہ کوئی دوسری بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس جملے کو درست ہونا چاہیے، اس کو حذف ہونا چاہیے، اس کو واپس لینا چاہیے، اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں بالعموم ٹی وی پہ لوگ بیٹھتے ہیں، انہی بزرگوں کی عبارات کے دفاع میں لگ جاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بزرگ کی عبارت کا دفاع کرنے کے لیے۔ میں اور آپ ہیں، ہم نے خدا کے سامنے اپنی جان دینی ہے، خدا کے سامنے ہمارے اخلاقی وجود کا سوال ہوگا۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے کسی بزرگ اور عالم نے کوئی ایسی بات لکھی ہے اس سے دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو آپ اس
بھائی کیا بات حسن الیاس صاحب، میری طرف سے داد وصول صاحب بھی واہ واہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پورے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا، قرارداد پاس ہو گئی،
بالکل مبارکباد دوں گا۔ اور حسن بھائی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اور کیونکہ آپ غامدی صاحب کے بہت قریب بھی رہتے ہیں، اور اس سے یقیناً بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اگر غامدی صاحب کو آپ اس پر کنونس کر سکیں کہ وہ اس پر کوئی اپالوجی یا کوئی کم سے کم یہ کہ بھئی یہ جملے مجھے نہیں لکھنے چاہیے، تو رائے کا اختلاف ضرور ہوتا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور حسن بھائی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، میں اپریشیٹ بھی کروں گا، اور میں ان کے لیے جو ہے وہ کلیپنگ بھی کروں گا کہ انہوں نے یہ
دعوت دیتا ہوں۔ سننے والے ہر سامعین میں سے ایک ایک شخص کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم چونکہ غامدی صاحب سے وابستہ ہیں، ان کے افکار و خیالات کو پڑھتے سمجھتے ہیں، کوئی جملہ، کوئی حرف، کوئی ایسی بات، ایک ہے استدلال، ایک ہے ادبی تلمی یا ادبی طنز کا دائرہ، اس میں اہل علم بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ بھی دوسرا شخص کرے گا کہ جی آپ کی اس بات سے میری دل آزاری ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ کسی کو وہ بات نہ کہو جو وہ اپنے لیے کہنا پسند نہیں کرتا۔ اگر میں اپنے لیے ایک بات پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے گمراہ کہیں، اگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ میری فکر کو عالمگیر ضلالت کہیں، اگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے منحرف فرقہ کہیں، تو پھر مجھے کسی دوسرے کے بارے میں بھی یہ بات ہزار دفعہ سوچنا چاہیے۔ میں اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ لوگ اس سے نکلے اس قصر سے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا دفاع کرنا ہے، اپنے استادوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے حق کا دفاع کرنا ہے، حق کے طالب علم ہیں،
اور ادب کے ساتھ کرنا ہے، تمیز و تمدد کے ساتھ کرنا ہے، جس کی آپ نے ایک خوبصورت مثال پیش کی۔ مجھے یہاں پر مجھے آسانی ہو رہی ہے، اور میں آپ کا شکریہ بارہا اس لیے ادا کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی آپ کی حمایت کر رہے ہیں، کہ آپ نے بہت ہی پیارے طریقے سے، انتہائی غیر روایتی طریقے سے آپ نے ایک مثال قائم کی ہے، اور اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھی تربیت بھی ہے۔ اچھا، وہ بات تو وہیں کی رہ گئی ہے، وہ اس کو مطلب آپ ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ امپروو ہو جانا چاہیے، یعنی کہ وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں، کتاب میں جو عالمگیر ضلالت کا ذکر ہے، اس سے مراد کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ذرا واضح کر دیں تاکہ فکر وہیں رہے اور ادب ملوز خاطر رکھا جائے۔
دیکھیے، وہ ایک پورا استدلال ہے، ایک پورا نیریٹو ہے، وہ علم کی مجالس میں زیر بحث آتا ہے، وہ امت کے ہاں کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہماری امت کی علمی روایت ہیں، صوفیانہ ٹریڈیشن کے اوپر ایک پورا متوازی نقطہ نظر رہا ہے۔ اس پہ بھی اختلاف کر سکتا ہے کوئی صاحب علم کہ وہ کہے کہ متوازی نقطہ نظر نہیں رہا، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان علماء اور صوفیانہ نظریات کے درمیان کوئی اختلافی امور نہیں پائے جاتے، یہ سب علم کی بحثیں، علم کی بحثیں علم کے دائرے میں ہوتی ہیں، علم ایک گریس، ایک سنجیدگی رکھتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، ہم نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی، ایک بات سامنے آئی ایک بڑے جلیل قدر صوفی کے بارے میں، ان کا نقطہ نظر ہم نے واضح کیا، اپنے علم کی حد تک کیا، نہ اس صوفی کی شخصیت سے کوئی اختلاف ہے، نہ ان کی عظمت سے کوئی اختلاف ہے، جو کچھ سمجھے اس کا اظہار کیا، اور اظہار بھی اس لیے نہیں کیا کہ کسی شخصیت کے خلاف کو بات کرنی ہے، ہم اگر ایک بات سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو اس کا اظہار کریں گے۔ ایک دوسرے صاحب علم نے اس سے اختلاف کیا، سنجیدہ اختلاف کیا، شائستہ اختلاف کیا، اس نے بھی کتاب لکھی، یہ کلچر ہے جس کو پروموٹ ہونا چاہیے۔ ہم ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اس وقت دیکھیں، دنیا جب ہمیں دیکھتی ہے تو وہ مذہب کے نمائندے کے طور پہ دیکھتی ہے، وہ چاہے میں ہوں یا چاہے مجھ سے مختلف آدمی ہو، ہم لوگوں نے مثال کیا قائم کرنی ہے، مثال یہ قائم کرنی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اکیڈمکس کی نوعیت کی، تحقیق کی نوعیت کی ہیں، ان کو بازاروں کی زینت نہ بنائیں، ان کو مناظروں کی زینت نہ بنائیں، سنجیدہ مکالمہ، علماء کے مابین اچھا رابطہ قائم ہو، آپس میں خیالات شیئر ہوں، ایک دوسرے کی باتوں کو جانیں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بات ان کے ذہن میں اگر اٹھ رہی ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے,
پس منظر کیا ہے.
تو محرکات کے دائرے میں نہیں جائیں گے. تو صوفیہ کے بارے میں ہمارا ایک نقطہ نظر ہے, تصوف کے بارے میں کہنا چاہیے ایک نقطہ نظر ہے. صوفیہ ہمارے لیے جلیل القدر ہستیوں کی حیثیت رکھتے ہیں, امت کے امام ہیں, لوگ بڑے بڑے ان میں پیدا ہوئے, غیر معمولی ان کی خدمات ہیں. ایک نقطہ نظر ہے, ایک فلسفہ ہے جس پر بات کی جاتی ہے.
ٹھیک, خوبصورت, بہت شکریہ حسن علی صاحب, آپ نے واضح کر دیا. اب چونکہ ڈاکٹر صاحب آخری حصہ ہے پروگرام کے, چند منٹس رہ گئے, اختلافی مسائل پہ غور کرنا چاہیے اس پہ بات کرنی چاہیے یا اخلاقی مسائل پہ غور کرنا چاہیے اس پہ بات کرنی چاہیے؟
دیکھیے بات تو ہر مسئلے پر ہونی چاہیے, اور میں حسن بھائی کو اپریشیٹ کروں گا دوبارہ کہ انہوں نے بہت بڑے دل کا اظہار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے رستے کو اجماع امت کو نہیں چھوڑنا چاہیے, قرآن و سنت اور احادیث کے نصوص کے خلاف کوئی رائے نہیں رکھنی چاہیے. یقیناً اگر کوئی ایسا اختلاف رائے ہوگا جو قرآن و سنت کی نصوص اور امت کی اجماعی روایت کے خلاف ہوگا تو اسے انحراف کہا جائے گا, اسے اختلاف نہیں کہا جائے گا.
اچھا, اس کو اختلاف نہیں کہا جائے گا, انحراف کہا جائے گا. پھر ظاہر ہے جس طرح انحراف سے آپ ڈیل کرتے ہیں وہی طریقہ ہوگا, تو بات شاید کم و بیش ویسی کی ویسی سمجھ میں آ رہی ہو, ویسی نظر آ رہی ہے. حسن علیہ صاحب آخری منٹ ہے اور میں یہ سوال لینا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں روایتی طور سے ہر بات کو جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے ہم جوڑ دیتے ہیں کنیکشن بنا کے اس کو بلاسفیمی کے ساتھ, یہ بھی ایک غلط رویہ ہے, اس کی کس طرح سے مذمت کرنی چاہیے؟ اور پھر باؤنڈری لائن کیا ہے, یعنی کہاں تک ہم برداشت کریں اور کہاں پہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں, یہ بھی بیان فرما دیں.
دیکھیے اس دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو اس کے کچھ حدود اور دائرے ہیں. آپ اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بات کو انحراف کہیں, کسی بات کو ضلالت کہیں, کسی بات کو گمراہی کہیں, آپ نے اپنے رویے کا اظہار کر دیا. اس کے بعد آپ کے دائرہ اختیار سے باہر, میں نے ابتدا میں جو بات کہی تھی وہ یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کہی تھی کہ علماء اس بات کو بھی مان لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی کو کہ فلاں منحرف ہے, فلاں باطل گروہ ہے, فلاں باطل فرقہ ہے, چلیے یہ بھی آپ کہتے رہیے. آپ اس وقت تک یہ بات کہیں گے جس وقت تک کچھ اصولی چیزوں پر آپ سے ڈیبیٹ نہ ہو جائے, یہ امت کی اجماعی روایت ہو یا مسلمانوں کا ایک مسلسل متواتر کوئی تہذیبی عمل ہو, اس سے کوئی انحراف کرتا ہے, اختلاف کرتا ہے, وہ دائرہ اسلام سے باہر رہتا ہے, اس کے پیچھے کچھ فکری استدلالات ہیں. ان استدلالات پہ جب تک بات نہیں ہوگی تو میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ برداشت کریں, وہ نہیں برداشت کر سکتا. وہ کہے گا مجھے باطل فرقہ, وہ کہے گا منحرف فرقہ. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے یہ کہہ دیا, آپ کا کام پورا ہو گیا. اب دوسرے کو یہ حق دیں کہ وہ کم سے کم یہ کہنے کی جسارت کرے کہ میں باطل فرقہ نہیں ہوں, میں گمراہ نہیں ہوں, میں بدنیت نہیں ہوں. یہ حق مانے دوسرے کا. میں آپ سے آپ کا یہ حق نہیں چھینتا کہ چلیے آپ نے اگر کسی پہ فتویٰ لگانا ہے تو لگا دیجئے, اس سے روکنے کے لیے مجھے کچھ دوسری بحثیں کرنی پڑیں گی, بتانا پڑے گا کہ جس بنیاد پہ فتویٰ لگایا اس کا استدلال درست نہیں ہے. لیکن ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے؟ کیا ہمارا یہ دائرہ اختیار ہے کہ ہم کسی پر یہ فتویٰ لگا کے کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے چل دوڑیں
جی,
اس کو پتھر ماریں
جی,
اس کو گھروں سے بے دخل کر دیں
جی.
ہمارا اختیار یہ بھی نہیں ہے. آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا, آپ چیزوں کو سپرد کریں, قوانین کے سپرد کریں, حکام کے سپرد کریں. اس کلچر کو بھی ہم اگر فروغ دینے میں کامیاب ہو جائیں,
بہت اچھے, بہت اچھے,
یقین جانے بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں
گی. جی محمد حسن الیاس صاحب, آپ کے انتہائی شکر گزار.